आखिर वो दिन आ ही गया था जब दीवा को आर्यांश के पास रहने के लिए जाना था। दीवा ने अपना हॉस्पिटल का काम निपटाया और फिर आर्यांश के घर पर पहुंच गई थी। वहां सब कुछ दीवा की एक्सपेक्टेशन से परे था। ना उस जगह पर कोई हाउस हेल्पर थे और ना ही किसी तरह की चहल पहल। वो एक शांत जगह थी। ऊपर से जब दीवा आर्यांश के कमरे में गई तो वहां एक लड़की मौजूद थी। दीवा को अचानक वहां देखकर वो लड़की गुस्सा हो गई थी और दीवा से उसका इंट्रोडक्शन मांगने लगी। दीवा को समझ नहीं आया कि वो अपने बारे में क्या बताए कि तभी आर्यांश वहां पहुंच गया। आर्यांश ने दीवा का परिचय उसकी नौकरानी के तौर पर दिया था। जैसे ही आर्यांश ने दीवा को नौकरानी बताया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, तो वहीं वो लड़की आर्यांश के पास जाकर उसकी सीने से लिपट गई थी। आर्यांश ने उसे रोका तक नहीं था। आर्यांश के बताते ही वो लड़की खुश हो गई थी, मानो उसके अंदर सभी तरह की जलन खत्म हो गई हो। उसने हल्के तरीके से कहा, अच्छा नौकरानी है? हाँ बिल्कुल, आर्यांश बोला। पहली बार के लिए दीवा को लगा कि शायद आर्यांश कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन फिर उसने आर्यांश के चेहरे की तरफ देखा तो वो बिल्कुल सीरियस था। उसे मन ही मन खुद पर हंसी आने लगी। वो बेवकूफ थी, पहले रक्षित की नज़रों में तो अब आर्यांश की नज़रों में। आर्यांश के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था, ना ही दीवा के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स थी। फिर भी ना जाने क्यों दीवा को दिल ही दिल में बुरा लग रहा था। दीवा वहां सुन सी खड़ी थी, तो वो लड़की आर्यांश की और करीब आ रही थी, जैसे वो दीवा को साबित करना चाहती हो कि वही उस घर की मालकिन है। उस लड़की ने अपनी बाहें आर्यांश के गले में डाली और कहा, अच्छा बताओ ना बेबी, आज रात हम क्या खाने वाले हैं? उन्हें इतना करीब देखकर दीवा के दिल में आग सी जल रही थी। आर्यांश को तो मानो किसी चीज से फर्क ही ना पड़ रहा हो। व्हाइट सॉस पास्ता और गार्लिक ब्रेड कैसा रहेगा कि आना? आर्यांश ने भौहें उठाकर पूछा। परफेक्ट, वैसे ही मेरा आज कुछ चीजी खाने का मन कर रहा है, कियाना ने शरारती अंदाज में जवाब दिया। आर्यांश उसकी बात सुनकर तिरछा मुस्कुराया। उसने कियाना का हाथ पकड़ा और फिर उसे ड्रेसिंग टेबल के आगे बिठा दिया। वो ड्रायर से खुद उसके बालों को सुखाने लगा। दीवा ने देखा आर्यांश उसे काफी अडोर कर रहा था। वो खुद को मन ही मन समझाने लगी, अच्छा है ना इसकी लाइफ में कोई और औरत है, इसी बहाने ये मुझे तंग नहीं करेगा। अगर मुझे इसके लिए खाना ही बनाना है या घर के थोड़े बहुत काम करने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके करीब रहने से बेहतर है कि मैं इसकी नौकरानी बनकर रह लूं। बस 2 महीनों की बात होगी और फिर मैं चली जाऊंगी। दीवा खुद में ही खोई हुई थी। तभी कियाना ने तीखे अंदाज में कहा, अब यहाँ खड़े होकर हमें घूरती रहोगी या जाकर काम भी करोगी? दीवा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप कमरे के बाहर आ गई। कुछ ही देर में उसने किचन भी ढूंढ लिया था। किचन काफी बड़ा था और मॉडर्न भी, जहाँ सभी तरह के अप्लायंसेज रखे हुए थे। दीवा ने फ्रिज खोला तो वहाँ ताज़ी सब्जियाँ मिल गई थी। उसने पास्ता उबालने के लिए रखा और फिर सब्जियाँ काटने लगी। दीवा के चेहरे पर इस वक्त गुस्से के गहरे भाव थे। मेरा आज कुछ चीज़ी खाने का मन कर रहा है, दीवा ने कियाना की आवाज़ की नकल उतारते हुए कहा। फिर उसने मुंह बनाया और आगे बोली, छी, कितनी घटिया बातें कर रही थी वो। अफसोस हो रहा है कि आर्यांश की चॉइस इतनी बुरी है। दीवा काफी सलीके से काम कर रही थी। वो लंदन में रहती थी, तब उसने कुकिंग करना सीखा था। खाना बनाते वक्त उसने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना मैं इसमें कोई ऐसी दवा मिला दूं जिसके बाद इन्हें खाने के बाद उनका पेट खराब हो जाए। कुछ ही मोमेंट में दीवा ने अपना विचार बदल दिया था। वो एक डॉक्टर थी और जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। दीवा कुकिंग में अच्छी थी, इस वजह से उसने ना सिर्फ व्हाइट सॉस पास्ता और गार्लिक ब्रेड बनाए, उसने साथ में अच्छे से सैलड भी तैयार किया था। एपेटाइजर में उसने हेल्दी लेकिन टेस्टी सूप बनाया था। उसे भी भूख लगी हुई थी, इसलिए बीच में उसने खुद के लिए नूडल्स बना लिए और खुद का पेट भरा। कुछ ही देर में दीवा ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। डाइनिंग टेबल पर आने के बाद आर्यांश ने दीवा को शक भरी निगाहों से देखा। दीवा ने प्लेटिंग भी काफी अच्छे तरीके से की थी। इतना सब कुछ बन जाने के बाद भी कियाना ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी मेट कुछ ज्यादा ही स्लो है? तुम्हें इसे काम से निकाल देना चाहिए। तुम ज्यादा सोच रही हो बेबी, बस ये एक नौकरानी है। जब तक ये अच्छा काम कर रही है तब तक मुझे इसे कुछ पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब अपना मूड अच्छा करो, साथ में खाना खाते हैं, आर्यांश बोला और कियाना की प्लेट में सर्व करने लगा। खाना खाते हुए कियाना ने उसे वाइन मंगवाई तो दीवा को पता चला कि उस घर में एक लग्जरियस बार एरिया भी बना हुआ था। कियाना दीवा के सामने कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रही थी। दीवा का पेट भरा हुआ था तो उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। खाना हो जाने के बाद कियाना वहां से जाने लगी। उसे सार्थक ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। जाने से पहले उसने आर्यांश के होठों पर हल्का सा किस किया, जिस पर दीवा ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। सुबह उसने भी आर्यांश को यहीं पर किस किया था। कियाना के जाने के बाद दीवा ने टेबल क्लीन किया और फिर बर्तन साफ करने के लिए किचन में आ गई थी। बस 2 महीनों की बात है दीवा, झेल लो, वैसे भी आर्यांश का ध्यान इसके ऊपर है तो वो मेरे पीछे नहीं आएगा, दीवा ने मन ही मन कहा। दीवा अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे आर्यांश के आने का एहसास भी नहीं हुआ। अचानक आर्यांश की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान टूटा। आर्यांश ने धीमी और सख्त आवाज में कहा, क्या तुम नाराज हो? दीवा चौंकते हुए उसकी तरफ पलटी। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर कपूर, आप मजाक कर रहे हैं क्या? भला मैं क्यों आपसे नाराज होंगी? आपके घर की मेड आपसे क्यों नाराज होगी? तो तुम्हें सच में ये लगता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ अपने घर के काम करने के लिए बुलाया है? आर्यांश ने जवाब दिया और अपना हाथ बढ़ाकर दीवा को खुद के करीब खींच लिया था। उसकी इस हरकत पर दीवा की सांस अटक गई थी। वो आर्यांश को रोकना चाहती थी, खुद से दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन आर्यांश ने उसे कसकर पकड़ लिया। आर्यांश का चेहरा दीवा की गर्दन में गड़ा हुआ था और वो उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। आर्यांश की गर्म सांसें दीवा को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसने कसमसाते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़िए मिस्टर कपूर, आपकी गर्लफ्रेंड ने देख लिया तो वो नाराज हो जाएगी। दीवा खुद को आर्यांश से जितना छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वो उसे उतना ही टाइटली पकड़े जा रहा था। आर्यांश ने दीवा के चेहरे की तरफ देखा, उन दोनों के नाक आपस में मिले हुए थे। इससे क्या फर्क पड़ता है? आर्यांश ने बेपरवाही से कहा। क्यों फर्क नहीं पड़ता? आपकी एक गर्लफ्रेंड है, आपको उसके लिए लॉयल रहना चाहिए, दीवा ने जोर से जवाब दिया। तो तुम्हें उससे जलन हो रही है? आर्यांश ने सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर दीवा झेंप गई थी। दीवा ने अपनी नजरें नीचे कर ली और जवाब में कहा, और भला मैं उससे क्यों चलूंगी? मिस्टर कपूर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। बातें करते हुए दीवा फाइनली आर्यांश के बाहों के घेरे से आजाद हो चुकी थी। वो दूसरी तरफ जाने के लिए पलटी ही थी कि आर्यांश ने उसे फिर से पकड़ लिया था। मुझे मेरे नाम से बुलाओ, आर्यांश ने दीवा की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा। उसकी आंखों में देखकर दीवा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी कि आर्यांश फिर से तेज आवाज में बोला, मैंने कहा मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मिस्टर कपूर, दीवा हड़बड़ाकर बोली। न जाने क्यों वो आर्यांश का नाम पुकार ही नहीं पा रही थी। आर्यांश ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा होगा?
उसका ओरा इस वक्त काफी खतरनाक लग रहा था, जिससे दीवा के चेहरे पर घबराहट के मारे पसीने की बूंदें उभर आई थीं। आर्यांश वैसे भी गुस्से में सनकी हो जाता था और उसे देखकर किसी को भी डर लग जाता था, और यही हाल इस वक्त दीवा का हो रहा था। न जाने वो उसे इस बात की क्या सजा देने वाला था। प्लीज आप चैप्टर पढ़कर कॉमेंट किया करो, ऐसा लगता है कोई नहीं पढ़ रहा। चैप्टर ना दो तो आप बोलते हो कि टाइम पर पार्ट्स नहीं आते। यहाँ तो लिखने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बस एक क्लिक करना होता है, पर अफसोस आपसे तो वो भी नहीं होता।